जयदेवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 18
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतां नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊनं अनुभागभागमेत्तो विजत्थ दोषस्स संभवो नत्ति ಸಂಪಣಮಿಯಜಿನನಾಹಂ ಸಂಕಮಮನುಭಾಗಗೋಯರಂ ವೋಚ್ಚಂ.
ಯಹ ಶ್ರೀ ವೀರಸೇನಾಚಾರ್ಯ ರಚಿ ಜಯಧವಲಾ ಟೀಕಾ ಹೈ ಜೋ ಕಷಾಯ ಪಾಹುರ್ ತಥಾ ಚುರ್ಮಿ ಸೂತ್ರ ಗ್ರಂಥೋ ಪರ್ ಲಿಖಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಜಿನ್ಕೆ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಗುಣಧರ್ ಭಟ್ಟಾರಕ ತಥಾ ಯತಿಯುಷವ ಆಚಾರ್ಯ ಜಿನ್ಹೋನೆ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಕೆ ಉಪದೇಶ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಇನ್ ಗ್ರಂಥೋ ಕಿ ರಚನಾ ಕಿ ಹೈ. ನವವೀ ಪುಸ್ತಕ जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 145 पर आ गए हैं. 145 कल से अपना वृद्धि का प्रकरण शुरू हुआ है तो उसमें तीन अनुयोग द्वार है, समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पभूतव. उसमें मिथ्यात्व में 6 प्रकार की वृद्धि होती है, 6 प्रकार की हानि होती है और उसके पश्चात अवस्थान भी होता है. ये होता है ये कह देना ही उसकी समुत्कीर्तना है. कल हमने हानियों के कथन के बारे में देखा था क्योंकि वृद्धि कब होती है, जब बढ़ाकर बनता है तब वृद्धि होती है. और हानि कब होती है तो कांडक रूप से जो घात होगा तो उसको हानि कहेंगे. तो उस हानि में 6 प्रकार की हानि हो सकती है. तो उत्कृष्ट अनुभाग के वहां से लेकर उन्होंने हानि का कथन शुरू किया था. तो छोटे में छोटा अगर कांडक होता है तो अनंतवा भाग हीन हो जाता है, अनंतवा भाग उसके हानि होती है. तो कितने ही स्थान ऐसे कि वहां तक तो अनंत भाग हानि ही होती चली जाएगी. फिर और बड़ा कांडक हो जाएगा तो वह असंख्यात भाग हानि कहेंगे. कितने ही स्थान असंख्यात भाग हानि के जाने के बाद फिर संख्यात भाग हानि वाला कांडक होगा. कांडक का प्रमाण भी अधिक अधिक जहां होता है और जहां संख्यात भाग कम होता है, यानी कांडक रूप से उतने का घात होना उसको कहेंगे असंख्यात भाग हानि. फिर संख्यात गुणा हानि में क्या लिया था, पहली बार जब 2 गुणा हानि यानी आधा हो जाता है, जितना अनुभाग था वो आधा होना उसको कहेंगे 2 गुणा हानि हुई यानी संख्यात गुणा हानि हुई. उसका भी आधा, उसका भी आधा, उसका भी आधा, आधे का आधा, आधे का आधा, आधे का आधा. तो ये सारे संख्यात गुणा हानि वाले हैं. कब तक, जब जाके असंख्यात गुणा हानि हो जाएगी. तब तक के बीच वाले सारे स्थान क्या कहलाएंगे, संख्यात गुणा हानि वाले. फिर असंख्यात गुणा हानि के स्थान हो गए और फिर जाके अनंत गुणा हानि यानी अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग नष्ट होगा, वहां कहेंगे अनंत गुणा हानि. अब इसी का विशेषार्थ हम पढ़ेंगे 145 पृष्ठ पर. यहाँ पर मिथ्यात्व के अनुभाग संक्रम में जो संक्रम हो रहा था उसकी बात है. 6 वृद्धियां, 6 हानियां और अवस्थान संक्रम कैसे संभव है इसका ऊहापोह किया है. उनमें से 6 वृद्धियों का व्याख्यान अनुभाग विभक्ति के समय कराए हैं, यानी अपने जघन्य से लेकर कितना अधिक अधिक बन सकता है, अनंतवा भाग अधिक, असंख्यात्वा भाग अधिक, संख्यात्वा भाग अधिक बंद होगा तो उसका संक्रमण भी उतना ही बढ़ेगा. तो यहाँ वृद्धि की बात फिर दोबारा नहीं समझाई है, इसलिए यहाँ पर 6 हानियों का ही मुख्य रूप से विशेष विचार किया है. यहाँ पर जो कुछ कहा गया है उसका सार यह है कि जो उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म है उसका यदि घात किया जाए तो ऊपर से घात करते हुए नीचे की ओर आया जाएगा, क्योंकि ऊपर हम कांडक बनाएंगे तो उसका अनुभाग घटकर वो नीचे की अनुभाग जितना हो जाएगा। उसमें भी सबसे जघन्य अनुभाग कांडक, यानी छोटे में छोटा अनुभाग कांडक अगर लेते हैं तो वो क्या है, तो उसका अनंतवा भाग हानि वाला कांडक होगा। तो कहते उर्वंक, अंतिम उर्वंक प्रमाण होगा, क्योंकि वो अनंतवा भाग वहां कम होगा, इसलिए उसको अंतिम उर्वंक कहा। क्योंकि अनंतवे भाग का प्रमाण भी अलग अलग होगा, जितना अनुभाग है सत्ता में भाग देने वाली संख्या तो उतनी की उतनी है। जहां ओरिजिनल अनुभाग मैक्सिमम है वहां वो कांडक होगा, वो अंतिम कांडक वो भी उस प्रमाण में होगा। उससे बड़ा अनुभाग कांडक चरम और द्विचरम उर्वंक प्रमाण होगा, उसमें दोनों ही आ गए। दोनों आ गए ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है, जरा देख लेते हम। ये उत्कृष्ट अनुभाग था, उसमें मिनिमम पॉसिबल कांडक किया,
अंतिम उर्वंक,
हाँ, तो ये अंतिम उर्वंक प्रमाण नष्ट हो गया। अब यहाँ कहते ये कांडक अगर बड़ा हो जाए
चरम और द्विचरम
तो कितने की हानि होगी, चरम भी गया और द्विचरम भी गया, चरम और उर्वंक भी चला गया, द्विचरम भी चला गया, क्यों एट ए टाइम एक ही कांडक के घात द्वारा उसके उसकी हानि हो गई, ये बताना चाहते। ये बात ख्याल में आई, नहीं ये एक ही कांडक में ये हमने ऐसा कांडक लिया था पहला छोटा, हाँ तो वहाँ तो इतनी ही इतनी हानि हुई थी, ये सत्ता में रहा था, अब जितनी हानि हुई वो चरम उर्वंक प्रमाण थी। अब एट ए टाइम उसने इतना बड़ा कांडक किया कि वो चरम और द्विचरम वो दोनों ही नष्ट हो गए, एक ही कांडक इतना हुआ, एक ही बार में इतना घटा दिया एक अंतर्मूर्त में। अंतर्मूर्त तक तो उतना का उतना रहा, और अंतर्मूर्त के अंत में जब अंतिम फाली उसकी खिर गई यानी उसका अनुभाग घट गया, तो हम कहेंगे वहां हानि हो गई। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक उर्वंक स्थान के द्वारा अनुभाग कांडक का प्रमाण बढ़ाते हुए, यानी हम और अनुभाग कांडक बढ़ाएंगे तो और नीचे का उर्वंक प्राप्त होगा, और नीचे का उर्वंक प्राप्त होगा। जब तक कांडक प्रमाण अर्थात आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण उर्वंक स्थान नीचे उतर कर, ये कांडक जो है
छोटा,
जैसे छोटा बड़ा है,
पे
पर्याय समास में हमने देखा था कि कांडक का प्रमाण था सुचंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, यहाँ कांडक का प्रमाण आवली का असंख्यात भाग कहा है, और अभी जो हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं द्रव्य परिवर्तन, हाँ। वहाँ कितने बार होता है उसको अगर हम कांडक कहेंगे उसको तो अनंत की बात है, तो जहाँ जो प्रमाण होगा उसको वहाँ ले।
ये तो बराबर है, स्थिति एक स्थिति अनुपात कांडक में हजारों अनुपात, अरे एक
स्थिति कांडक नहीं है, उसकी बात यहाँ नहीं है। एक कांडक बढ़ाते बढ़ाते कितने हो सकते हैं, ये एक कांडक हुआ, दूसरा कांडक, तीसरा कांडक, चौथा कांडक, इतने आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण अलग अलग कांडक है, उन सब में अनंतवा भाग ही घटता है, ये बात बताना चाहिए। यानी ऐसे अलग अलग उर्वंक कितने हुए, तो आवली के असंख्यात वे भाग उर्वंक हुए अलग अलग। तो कहाँ तक नीचे उतरना, असंख्यात भाग वृद्धि स्थान नहीं मिलता तब तक अनंत भाग हानि ही होती रहती है, यानी इतने सारे जो स्थान है वो अनंत भाग हानि के हैं। इसके बाद वाले जो होंगे इससे बड़ा कांडक होगा वो असंख्यात भाग हानि वाला होगा, यानी अभी कांडक और बड़ा होगा। अनंत भाग वृद्धि स्थान नहीं मिलता तब तक अनंत भाग हानि ही होती है, उल्टे क्रम से उसको वृद्धि स्थान कहेंगे, यहाँ से उल्टा कहेंगे ये इतना था और यहाँ पर वृद्धि हुई, तो ये असंख्यात भाग हानि वाला, असंख्यात भाग वृद्धि वाला अंतिम स्थान है। यहाँ तो ऊपर से देखते हैं तो अनंत भाग हानि थी और यहाँ से जो है वो असंख्यात भाग हानि शुरू हुई। अब हम उल्टे क्रम से अगर देखेंगे, क्योंकि हानि में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं
वृद्धि से,
और यहाँ से अगर हमको समझाना है
वृद्धि की अपेक्षा,
तो कहेंगे वो यहाँ कोई जीव था इतना अनुभाग वाला और उसने इतना बंध किया, तो उसको क्या कहेंगे, असंख्यात भाग वृद्धि की उसने, ऊपर चढ़ते हुए असंख्यात भाग वृद्धि का ये अंतिम स्थान है। यहाँ से यहाँ तक ये जो रेंज है वो असंख्यात भाग
हानि
वृद्धि वाली, नीचे से ऊपर वृद्धि वाली, ऊपर से नीचे हानि वाली। देखो कहाँ तक उतरना, तो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण उर्वंक स्थान उतरना। कब तक? वहां असंख्यात भाग वृद्धि स्थान नहीं मिलता तब तक, यानी यहाँ तक यह, यहाँ से कोई ऊपर अधिक बंद करता है तो यह असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान है। ये पर ऊपर से हम देख रहे हानि के स्थान देख रहे, यहाँ से कोई अधिक बंद करेगा तो वो वृद्धि कहलाएगी, वो असंख्यात भाग अधिक होगी, तो उसको हम वृद्धि की बाजू से अगर उसको कहेंगे तो असंख्यात भाग वृद्धि का वो स्थान है। यहाँ जो हमने
ये पश्चात आने पूर्व भी जो पहले जो हम लोग जो अनंत भाग वृद्धि का स्थान देखते तो यहाँ पे ये एकदम ऊपर आएगा, और वहाँ पे जो हम लोग वृद्धि में देखते हैं वहाँ पे अनंत भाग वृद्धि पहले होती है, पीछे असंख्यात भाग वृद्धि होती है, पीछे संख्यात भाग वृद्धि है, पीछे संख्यात गुणा, असंख्यात गुणा और अंत गुणा होता है। यहाँ पे ये पश्चात आने पूर्व से ये पहले अनंत भाग हानि पहले होगी,
क्योंकि वहाँ तो हानि देख रहे हैं।
हाँ, हानि देख रहे हैं।
वृद्धि अगर देखनी है तो ये जो हम अनंत भाग हानि का जो प्रथम स्थान है वहां से अगर ऊपर जाएगा तो अनंत भाग वृद्धि हुई, अनंत भाग वृद्धि हुई, उसके लिए नीचे उतर कर आओ, वहां तक अनंत भाग वृद्धि के स्थान है और नीचे उतरो, ये असंख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान कहेंगे। हाँ। ख्याल में यहां से हमने शुरू की, यहां से अगर वृद्धि करता है तो अनंत भाग वृद्धि, यहां से करता है तो भी अनंत भाग वृद्धि, यहां से करता है तो भी अनंत भाग वृद्धि, यहां से करेगा तो असंख्यात भाग वृद्धि का ये पहला स्थान है। ऐसा कुछ नहीं है, वृद्धि
हानि करेगा तो बढ़िया है ना,
मोक्ष मार्ग में कोई हानि होती है ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर अनुभाग में तो कुछ अलग ही बात चलती है, ये वृद्धि हानि दोनों ही होती है मिथ्यात्व अवस्था में, मिथ्यात्व की बात चल रही है यहाँ पर, मिथ्यात्व की हानि वृद्धि की बात चल रही है। मुझे लगता है ये जो हमने ओरिजिनल में पढ़ा है वहाँ जो चौथे लाइन में लिखा है ना, इस प्रकार इस विधि से,
इसी पुस्तक में,
हाँ
पेज 144 चौथी लाइन ऊपर, वॉल्यूम 4 एंड ऑल अदर ये 144
ये पहले लाइन से हम पढ़ेंगे। देखो अब हानियों का कथन करने पर मिला, हम विशेषार्थ के साथ साथ जाएंगे इसको, सबसे उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाले जीव के द्वारा अंतिम उर्वंका का घात करने पर प्रथम अनंत भाग हानि रूप भेद होता है। हमने ऊपर से देखा ये पहला अनंत भाग हानि वाला स्थान है, उसी के द्वारा अंतिम और द्विचरम उर्वंकों का घात करने पर दूसरा अनंत भाग हानि रूप भेद होता है। उसी के द्वारा ने उसी सत्कर्म के सत्कर्म था और उसने कांडक बढ़ा दिया तो और एक उर्वंक नष्ट हुआ उसी कांडक के द्वारा, तो ये स्थान हुआ, ये दूसरा स्थान हुआ अनंत भाग हानि का। नीचे उतर आ रहे हैं हम, हानि द्वारा कौन सा स्थान, तो अनंत भाग हानि, अनंत भाग हानि, अनंत भाग हानि, एक एक उर्वंक उसमें हम ऐड करते चले जाएंगे। इस प्रकार इस विधि से नीचे कांडक प्रमाण उतरे हुए जीव के, कांडक का हमने प्रमाण क्या देखा था, अवली का असंख्यात भाग, पश्चातानो पूर्वी से प्रथम संख्यात भाग वृद्धि जो लिखा है वो असंख्यात होना चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि हम अनंत भाग हानि से उतरते हुए जिस स्थान पर उसको हम असंख्यात भाग हानि कहेंगे उल्टे क्रम से देखेंगे तो वो असंख्यात भाग वृद्धि यहाँ से प्रारंभ होती है, ये असंख्यात भाग वृद्धि का ये पहला स्थान है। यहाँ से संख्यात भाग वृद्धि कैसे कहलाएगी? अभी कुछ नहीं करना, फिर भी देख लेते हैं। मैंने कल ही उसमें प्रश्न चिन्ह रखा था, ऊपर तो ऐसे ही लिखा है एवं अनेन विहानेन हेट्ठा उवारे एवं जाव कंडय मेत्त मोइन्नस पच्छान पूर्वीये पड़म संखेज्य भाग वड्डी ठाणंती पड़म और एक म होता तो ठीक था, पढ़म नहीं होता है, पढ़मम होगा।
क्योंकि यह विशेषार्थ पर दसवें लाइन में असंख्यात भाग वृद्धि
नेचुरली, क्योंकि हमने देखा है हमने अनंत भाग हानि करते 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 यहाँ से असंख्यात भाग हानि शुरू हो जाएगी, उल्टे क्रम से देखेंगे तो यहाँ से असंख्यात भाग वृद्धि का ये पहला स्थान है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगा असंख्यात भाग वृद्धि, फिर और नीचे से ऊपर जाएगा तो भी असंख्यात भाग वृद्धि, और नीचे से जाएगा तो भी असंख्यात भाग वृद्धि। तो ऊपर से आते हुए पश्चातानुपूर्व ने ऊपर से आते हुए असंख्यात भाग वृद्धि का ये पहला स्थान है, ये बात ख्याल में आती है? यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है बंद करके तो असंख्यात भाग वृद्धि का ये प्रथम स्थान है, और इससे नीचे आते हैं तो असंख्यात भाग वृद्धि का दूसरा तीसरा चौथा स्थान होगा। उसकी बात नहीं चल रही। वहाँ जो हम देखते हैं, वहाँ जो देख रहे थे तो क्रम से उसी को बढ़ाते थे, हम सबको उत्कृष्ट के साथ कंपेयर कर रहे, उत्कृष्ट में से कितना घटाया एट ए टाइम उसने, उसकी बात यहाँ चल रही है। वो कांडक वाली बात यहाँ वो पूरी तरह से लागू नहीं होती, वहाँ कुछ हम अलग वो चार वगैरह वो तो बात अलग थी यहाँ पर, तो यहाँ से उसके असंख्यात भाग हानि शुरू होती है, उल्टे क्रम से देखेंगे यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो असंख्यात भाग वृद्धि का वो पहला स्थान है, इसलिए यहाँ अ होना पेंसिल से अभी तो लिख के रखो, प्राकृत में भी पढ़म म चाहिए, यानी या पढ़म असंख्यज ही करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है प्राकृत के नियम अलग है, आपको तो पता है अकर का लोप भी होता है कितने, हाँ बहुत जगह ऐसा पढ़मा के बदले पढ़म लिखेंगे तो भी उसमें वो असंख्यज घटित हो सकता है, ये ऐसे प्राकृत के नियम है। देखो अभी हम हिंदी में थोड़ी करेंगे, चौथी लाइन के लास्ट में जीव के पश्चातानो पूर्वी से प्रथम असंख्यात भाग वृद्धि होना चाहिए था, ये मेरे मत से हो तो हम उसको पेंसिल से अ लिख के रखो वहां, क्योंकि संख्यात भाग वृद्धि बीच में आ ही नहीं सकता, अनंत भाग हानि वाला जो है उसको पहले में पहले मिलेगा तो असंख्यात भाग वृद्धि का मिलेगा, फिर और नीचे चले जाओ तो फिर उसको संख्यात भाग वृद्धि का मिल जाएगा। अभी हम विशेषार्थ से पढ़ते हुए फिर आएंगे, या इसी को पढ़ो ना जहाँ पढ़े थे, क्योंकि आगे ये क्लैरिटी और हो जाती है। देखो चौथी लाइन में पढ़ा हमने, वहां तक उतारना चाहिए पांचवी लाइन में आए, पुनः उसके साथ ऊपरी अनुभाग का घात करने पर, ऊपरी मैंने उसी अनुभाग का घात कर रहे हैं, और नीचे चले जाएंगे और बड़ा घात होगा और बड़ा कांडक होगा और बड़ा कांडक होगा, तो क्या हो गए सारे असंख्यात भाग हानि के ही सारे स्थान मिलेंगे। कब तक जाएंगे
अभी? जब भी तक संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान,
संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान यहाँ संख्यात होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या,
यहाँ पे संख्यात ही है आगे,
तो यह इसका अर्थ क्या है, वहाँ असंख्यात होना चाहिए था, यानी अपनी वो सिद्ध होती है ना बात। तो कहते उसके ऊपरी मनोभाग का घात करने पर असंख्यात भाग हानि का प्रारंभ होता है, यहाँ से लेकर पश्चातानुपूर्वी से प्रथम संख्यात भाग वृद्धि के उत्पन्न होने तक। पश्चातानुपूर्वी से इसीलिए कहा कि अगर ऊपर से हम देखते हैं तो यहाँ वाला जीव अगर उत्कृष्ट बंध करेगा तो उसकी संख्यात भाग वृद्धि होगी, इसलिए ऊपर की ओर से ये संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान है। अगर नीचे से हम आते हैं तो ये यहाँ से अगर वो वृद्धि करेगा तो ये संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान कहलाएगा। हम ऊपर की ओर से देख, ये असंख्यात वाले हैं दोनों और यहाँ से संख्यात वाले हैं, हम ये संख्यात भाग वृद्धि का ऊपर से पहला स्थान, पश्चातानुपूर्वी से ये पहला स्थान। बात बराबर है? देखो हम हानि की बात देख रहे हैं, अनंत भाग हानि से उतरते उतरते हमें ये स्थान मिला, ये हमारा असंख्यात भाग हानि का पहला स्थान है। और उल्टे क्रम से देखेंगे तो यहाँ से जो वृद्धि करेगा उसका ये असंख्यात भाग वृद्धि का इसका पहला स्थान है। और नीचे से अगर बात करेंगे तो यहाँ से भी असंख्यात भाग वृद्धि इसके भी है, तो नीचे से पूर्वानुपूर्वी से कहेंगे तो असंख्यात भाग वृद्धि का ये पहला स्थान है। ये भी यहाँ से सारे जो स्थान है वो असंख्यात भाग वृद्धि करके बंद करने वाले स्थान है। अब उसके नीचे आते हैं, यहाँ से हानि करने वाले के यहाँ से नीचे की ओर चले जाएं, ये सारे हैं संख्यात भाग हानि के स्थान। उल्टे क्रम से इसी स्थान को देखेंगे तो यहाँ से जो उत्कृष्ट बंद करेगा ये उसका पहला स्थान है संख्यात भाग वृद्धि का। इसको पश्चातानुपूर्वी इसलिए कहा, यदि नीचे की ओर से अगर हम बात कर रहे थे तो उसके पहले उसके संख्यात गुणा की वृद्धि होती थी और ये उसका पहला स्थान है जहाँ से संख्यात व भाग अधिक हो रहा है। तो नीचे से बात करेंगे तो संख्यात भाग वृद्धि का ये पहला स्थान है और ये अंतिम है, और हम ऊपर से बात करेंगे तो ये संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान है, वृद्धि के साथ उसकी कंपेरिजन। ऊपर की ओर से ही हम समझा रहे हैं, देखो पहले हमने क्या देखा कि ये सारे अनंत भाग हानि के स्थान है, और उल्टे क्रम से देखेंगे यहाँ से जितने जितने उत्कृष्ट बंद करेगा वो सारे अनंत भाग वृद्धि के स्थान है। उसके आगे ये सारे जो स्थान है यहाँ से यहाँ तक
असंख्यात
भाग हानि के हैं। तो जहाँ से असंख्यात भाग हानि के स्थान प्रारंभ हुआ उल्टे क्रम से देखेंगे तो ये असंख्यात भाग हानि का पहला स्थान है, वृद्धि का ऊपर की ओर वृद्धि का पहला स्थान है। ख्याल में आती ना? अब ऐसे ये सारे असंख्यात भाग हानि के स्थान कहाँ तक, जब तक संख्यात भाग हानि शुरू नहीं होती तो वही स्थान अगर हम वृद्धि की अपेक्षा देखेंगे, ऊपर की ओर से हम समझा रहे हैं इसलिए वो यहाँ संख्यात भाग वृद्धि का ये पहला स्थान है। कल तो कुछ नहीं मैंने बोला था ना, कल कुछ नहीं समझ में आया, दूसरे दिन आएगा। ये मूल ही पढ़ लेते अभी आगे। प्राकृत में पढ़म है मगर उसमें कुछ वहां अ लिख के रखो केवल, परंतु व्याकरण की दृष्टि से वो पढ़मा संख्येज जो भी कह सकते हैं, पढ़म संख्येज जो भी कहते उसमें कोई गलत नहीं है, परंतु उसमें अर्थ हमें असंख्य लेना चाहिए तो अपने समझने के लिए वहां अ होना चाहिए था। अ का लोप होता है बहुत जगह, संस्कृत जैसे उसके नियम नहीं है, थोड़े अलग है। देखो जहां हमने करेक्शन किया है ना उसके नीचे की लाइन पढ़ रही हूं मैं, यानी छठी लाइन, पुनः उसके साथ ऊपरी मनोभाग का घात करने पर असंख्यात भाग हानि का प्रारंभ होता है। जहां से हानि का प्रारंभ हुआ है वही उल्टे क्रम से देखेंगे तो वहां से असंख्यात भाग वृद्धि का वो पहला स्थान कहलाएगा, यही यहां बताया। यहां से लेकर पश्चातानुपूर्वी से प्रथम संख्यात भाग वृद्धि के उत्पन्न होने तक असंख्यात भाग हानि के विषय रूप स्थान होते हैं। कहां तक? यहां से ऊपर जाने वाला वो संख्यात भाग वृद्धि का स्थान है, वहां तक के जो सारे स्थान है वो क्या है, यहाँ के असंख्यात भाग हानि के स्थान। इससे नीचे घात किए जाने वाले अनुभाग के पश्चातानुपूर्वी से उत्कृष्ट संख्यात के साधिक अर्धभाग प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि के विकल्प परिहीन होने तक संख्यात भाग हानि का विषय होकर जाता है। अभी क्या कहना चाहते हैं? यहां से संख्यात भाग हानि शुरू हो गई, तो संख्यात भाग हानि जब कहेंगे संख्यात भाग घटना, तो पहले में पहले असंख्यात के बाद नंबर किसका आएगा? उत्कृष्ट संख्यात का। तो अनुभाग को, उत्कृष्ट अनुभाग को उत्कृष्ट संख्यात का भाग देकर उतना एक बड़ा कांडक करना, उसको कहेंगे संख्यात भाग हानि। उसमें और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो वो सारे क्या विकल्प हो गए? संख्यात भाग हानि के ही विकल्प होते चले जाएंगे। कब तक? तो कहते हैं इससे नीचे घात किए जाने वाले अनुभाग के पश्चातानुपूर्वी से उल्टे क्रम से हम वृद्धि की अपेक्षा से बता रहे हैं। कहाँ गया मेरा? उत्कृष्ट संख्यात के साधिक अर्धभाग प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि के विकल्प परिहीन होने तक संख्यात भाग हानि का विषय होकर जाता है। यानी ये हमने इसको उत्कृष्ट संख्यात से भाग दिया और जो हानि हुई अभी ये चल रही नहीं, ये असंख्यात भाग हानि वाले, ये संख्यात भाग हानि वाले स्थान है। तो संख्यात भाग हानि कब तक होगी?
अभी
यहाँ से बताया उन्होंने वृद्धि की अपेक्षा से बात की, तो उत्कृष्ट संख्यात के आधे प्रमाण से
कुछ अधिक,
हाँ कुछ अधिक किया, तो उतना बढ़कर है वो यहाँ जो स्थान है वहां तक ये क्या है?
संख्यात
भाग हानि के स्थान है लगातार। उसके आगे क्या होता है? वहां पर प्रथम द्विगुणहीन स्थान उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्या होगा?
आधे से भाग देंगे संख्यात के आधे पर,
जितना अनुभाग था उसका आधा हो गया। ख्याल में आई बात है? द्विगुणहीन स्थान प्राप्त होता, तो इसके आगे क्या कहेंगे? दो गुणाहीन यानी संख्यात गुणाहीन कहेंगे इसको। अनुभाग आधा होगा तो संख्यात गुणाहीन हो गया। यहां से लेकर जघन्य परिता संख्यात के अर्ध छेद प्रमाण द्विगुण हानियां नीचे उतरने तक संख्यात गुणहानि का विषय होकर चला जाता है। इसका अर्थ क्या है जरा देखते हैं। हमारी कोई संख्या है यहां, कोई भी एक, एक बार उसकी हानि हुई, एक द्विगुण हानि हुई, दो द्विगुण हानि हुई, तो कहते हैं कितने द्विगुण हानि हुई? हम अन्य कोई संख्या लेते हैं यहां पर, तो कहते हैं 16 के अर्ध छेद प्रमाण द्विगुण हानि हुई। क्या कहा?
16 के अर्ध,
कितनी बार द्विगुण हानि हुई? 16 के अर्ध छेद प्रमाण द्विगुण हानि हुई। तो मेरा प्रश्न है, यहाँ जो क्ष यानी एक्स जो पकड़ा है, तो 16 के अर्ध छेद यानी चार बार जो द्विगुण हानि हो जाएगी, तो यहाँ कितना भाग प्रमाण शेष रहेगा उसका? तो कितनी हानि हुई?
एक्स को चार बार,
चार बार द्विगुण हानि हुई, एक बार हुई तो एक्स बाय टू,
एक्स बाय सोलह, एक्स बाय सोलह,
सोलह हो जाएगा ना। कितनी बार हुई?
तो चार बार,
चार बार द्विगुण हानि, द्विगुण हानि हुई यानी उसका 16वां भाग है। अब यहाँ कितनी बार हानि हुई है?
अर्धछेद प्रमाण में।
किसके अर्धछेद?
जघन्य परिता
संख्या यानी मिनिमम असंख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण, यानी वहाँ वैल्यू कितनी हो गई? असंख्यातवा भाग प्रमाण हो गई, मिनिमम असंख्यातवा भाग प्रमाण है। इसके बाद क्या होगा?
असंख्यात गुणा,
गुणा की बात चल रही है,
हाँ। इसके बाद
इतना वहाँ भाग रह गया, उसका अर्थ है कि इतनी गुना हानि हुई है। यहाँ श का 16वां भाग शेष रहा, उसका अर्थ 16 गुना हानि हुई।
संख्यात भाग हानि का अंतिम स्थान
जब जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण द्विगुण हानिया हुई, तो उसका अर्थ है
संख्यात
कितने गुणा हानि हुई, तो असंख्यात गुणा हानि। कौन सा असंख्यात? जगन्य परिता संख्यात गुणा हानि, उसका अर्थ है जो अर्धच्छेद जो अनुभाग था उसको जगन्य परिता संख्यात का भाग देते हैं, तो उतना शेष रहा और उतनी अधिक हानि हुई। यह चार गुणा हानि का अर्थ क्या है? चौथा भाग शेष रहना। हमने
ये असंख्यात गुणा हानि का अंतिम स्थान होगा।
असंख्यात गुणा हानि का अंतिम स्थान, उसके लिए क्या कहा? दो गुणा हानि, दो गुणा हानि, दो गुणा हानि कितने बार हुआ?
जगन्य परिता,
तो जो छोटे में छोटा असंख्यात है उसके अर्धच्छेद प्रमाण बार हुआ। ये वाक्य फिर पढ़ेंगे, देखो। यहाँ से लेकर मिला, वहां पर प्रथम द्विगुणहीन स्थान उत्पन्न होता है, उसके बाद यहाँ से लेकर यानी कितने द्विगुण हानि होते होते नीचे आना है, ये सारे स्थान कौन से कहलाएंगे? संख्यात गुणा हानि वाले। तो कहते हैं जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण द्विगुण हानिया नीचे उतर कर उतरने तक संख्यात गुणा हानि का विषय होकर जाता है। ये सारे स्थान है संख्यात गुणा हानि के। संख्यात गुणा हानि का यह अंतिम स्थान है। क्यों? कितने असंख्यात गुणा हानि का, सॉरी संख्यात गुणा हानि का, क्योंकि अभी हम इसके आगे असंख्यात गुणा हानि शुरू होने वाली। वहां से लेकर पश्चात अनुपूर्वी से संख्यात भाग वृद्धि के भेदों के असंख्यात बहुभागों को संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि के सब अध्वान को तथा उससे नीचे चार वृद्धियों के अध्वान को विषय करके अंतिम अष्टांक स्थान के प्राप्त होने तक असंख्यात गुणहानि का विषय होकर रह जाता है। यानी जब तक अनंत गुणहानि नहीं होगी तब तक वो सारे बीच वाले जो है वो असंख्यात गुणहानि कहलाए। यहाँ पर अंतिम अष्टांक स्थान को छोड़कर शेष एक कम षट्स्थान प्रमाण कांडक घात करने वाले जीव के षट्स्थान के जितने स्थान है उसने कितने अलग अलग कांडक लिए, यहाँ पर एक कम इतने कांडक, असंख्यात गुणहानि का अंतिम विकल्प होता है। अनंत गुणहानि वाला एक ही विकल्प कहेंगे लास्ट वाला, वो अष्टांक कहेंगे उसको। यह उक्त कथन का भावार्थ है। पुनः अंतिम अष्टांक स्थान के साथ कांडक घात करने वाले के, यानी अभी इतना बड़ा लंबा कांडक लिया उसने कि वो अनंत गुणहानि का स्थान प्राप्त हुआ, तो उसको अष्टांक वाला, उसके अनंत गुणहानि का प्रारंभ होता है। यहां से लेकर सबसे उत्कृष्ट अनुभाग कांडक के प्राप्त होने तक उसका घात करने वाले के अनंत गुणहानि का विषय होता है। क्या कहना चाहते हैं? हमने जब देखा था ना उत्कृष्ट में उत्कृष्ट हानि किसके होती है, तो सबसे बड़ा उत्कृष्ट अनुभाग कांडक करने वाला वो अनंत गुणा हानि का अंतिम स्थान है। परंतु अनंत गुणा हानि वाला एक ही स्थान नहीं है, जहाँ असंख्यात गुणा हानि समाप्त होती है और अनंत गुणा हानि का पहला स्थान हुआ हमारा, फिर उसके और नीचे आओ और नीचे आओ, ये सारे स्थान क्या हो गए? अनंत गुणा हानि वाले। कब तक? उत्कृष्ट कांडक के प्राप्त होने तक। आठ वाला पहला स्थान तो हमने ले लिया ऊपर, जैसे असंख्यात भागहानि के इतने स्थान थे, संख्यात भागहानि के इतने स्थान थे, अब हम और नीचे उतर कर बताएंगे यहाँ पर कि मान लेते यहाँ पर उसका पहला अष्टांग शुरू हुआ, ये अनंत भागहानि अनंत गुणाहानि का पहला स्थान, उसके नीचे भी बहुत सारे, यहाँ तक उसने बड़ा से बड़ा कांडक कर सकता है, तो ये यहाँ से लेकर नीचे के सभी स्थान क्या कहेंगे? अनंत गुणा हानि वाले स्थान कहेंगे। कहाँ तक? जब तक सबसे बड़ा उत्कृष्ट कांडक का प्रमाण नहीं प्राप्त होता तब तक। यानी इसमें से कांडक घात के द्वारा यहाँ से हमने शुरू किया था
मैक्सिमम कितना,
ये वाला कौन सा था? अनंत वा भाग हानि वाला, वहाँ से लेकर अनंत गुणा हानि वाले तक हर एक टाइप में बहुत सारे स्थान मिले हमें, अनंत भाग आने वाले भी बहुत सारे स्थान,
असंख्यात
भाग आने वाले, संख्यात भाग आने वाले, संख्यात गुणा वाले, असंख्यात गुणा वाले और अनंत गुणा वाले, इतनी हानि के अलग अलग स्थान हमें समझ में आ गए।
जबकि स्थानों में वेरिएशन होगा ना, अनंत भाग हानि के और असंख्यात
स्थानों का वेरिएशन, वो वेरिएशन वो स्थानों की बात करेंगे ना, अनुभाग के स्थान हर एक की संख्या कितनी है वो विषय अलग, वो यहाँ पर नहीं है। अब इसको पहले समझेंगे क्योंकि वो स्थानों में आएगी बात या वृद्धि के स्थानों में उसके अल्प बहुत में आएगी। तो कहाँ तक होता है, तो उत्कृष्ट अनुभाग कांडक के प्राप्त होने तक। अब उससे बड़ा एक सिंगल कांडक नहीं हो सकता, ये बात बताना चाहिए। उससे नीचे के अनुभाग का अंतिम स्थान के साथ घात नहीं उपलब्ध होता, उसके नीचे के स्थान अनुभाग घात के द्वारा नहीं होते, ये ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? ये जो उत्कृष्ट कांडक इतना ही है, इसका नीचे के स्थान उत्कृष्ट अनुभाग का घात होकर नहीं प्राप्त हो सकता है। हो सकता है अनुभाग इतना था और वो घात के द्वारा इतना हो गया, ये तो हो सकता है।
उत्कृष्ट
के साथ झटके से यहाँ पर नहीं आ सकता कोई, स्टेप बाय स्टेप आएगा, बीच वाले स्थानों में से कांडक के द्वारा नीचे आ सकता है। पर ये हम सारे जो देख रहे थे उत्कृष्ट के साथ घटित कर रहे थे, उत्कृष्ट में से घटकर इतना ही वो अंतिम स्थान है जिसका प्रमाण है उत्कृष्ट कांडक प्रमाण, अनुभाग कांडक प्रमाण। इसी प्रकार अवस्थान संक्रम की संभावना का भी कथन करना चाहिए, क्योंकि इतनी वृद्धि या इतनी हानि के बाद जो अवस्थान होगा उसको उसका अवस्थान कहेंगे। हमने देखा था ये जो अभी हमने हानि का अंतिम स्थान देखा ना, उससे भी नीचे आकर वहां से वृद्धि का स्थान हो सकता है। अनंत गुणा वृद्धि का जो स्थान है हमने तत्प्रायोग्य जघन्य स्थान से वो लांग कर एकदम उत्कृष्ट बंद करता है, ये अनुभाग कांडक का जो प्रमाण हमें उत्कृष्ट देखा उससे भी नीचे अगर चले जाएंगे वहां से जो उत्कृष्ट बंद करके उत्कृष्ट स्थान तक आ सकता है, यानी वो उसकी उत्कृष्ट वृद्धि कहलाएगी। अवक्तव्य पद का यहाँ पर संभव नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व के अनुभाग का आलंबन लेकर उसकी उपलब्धि नहीं होती। ये तो हमने कल पढ़ा था, वो आज समझा थोड़ा बहुत। हाँ, वो उतने ही हो गए, केवल इसके वृद्धि के स्थान ज्यादा हो गए नीचे, उसके अनंत गुणा वृद्धि के स्थान बढ़ेंगे, बाकी इक्वल है स्थान। विशेषात अभी फिर से दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पर मिथ्यात्व के अनुभाग संक्रम में छह वृद्धियां, छह हानि और अवस्थान संक्रम कैसे संभव है इसका ऊहापोह किया है। उनमें से छह वृद्धियों का व्याख्यान अनुभाग विभक्ति के समय कर आए हैं, इसलिए यहाँ पर छह हानियों का ही मुख्य रूप से विशेष विचार किया है। यहाँ पर जो कुछ कहा गया है उसका सार यह है कि जो उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म है उसको यदि घात किया जाए तो ऊपर से घात करते हुए नीचे की ओर आया जाएगा। ऊपर की ओर से बता रहे कितना घात हो रहा है, उसमें भी सबसे जघन्य अनुभाग कांडक अंतिम उर्वंक प्रमाण होगा, उससे बड़ा अनुभाग कांडक चरम और द्विचरम उर्वंक प्रमाण होगा। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक उर्वंक स्थान के द्वारा अनुभाग कांडक का प्रमाण बढ़ाते हुए जब तक कांडक प्रमाण अर्थात आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण उर्वंक स्थान नीचे उतर कर असंख्यात भाग वृद्धि स्थान नहीं मिलता तब तक अनंत भाग हानि ही होती रहती है। ये बात ख्याल में आई ना, कांडक बढ़ाते जाओ ये सारे स्थान कैसे है अनंत भाग वृद्धि वाले हैं,
अनंत भाग हानि वाले ना,
अनंत भाग हानि वाले हैं। कब तक नीचे उतरना है? उल्टे क्रम से जहां असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान जब तक नहीं प्राप्त होता तब तक। यहां हानि का प्रकरण है इसलिए ऊपर से नीचे की ओर गए हैं और यही पश्चातानुपूर्वी है। ऊपर से नीचे की ओर कहना यही पश्चातानुपूर्वी है, हम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बताते हैं। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए, यहाँ पर अनंत भाग हानि में जो अनुभाग कांडक का प्रमाण कहा है सो वह अंतिम उर्वंक प्रमाण भी हो सकता है चरम और द्विचरम उर्वंक प्रमाण भी हो सकता है, चरम द्विचरम और त्रिचरम उर्वंक प्रमाण भी हो सकता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर अनुभाग कांडक के प्रमाण में वृद्धि करते हुए वह आवली के असंख्यातवे भाग के बराबर चरमादि उर्वंक प्रमाण भी हो सकता है। ये तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा, यानी कितने हम स्थान नीचे नीचे आ सकते हैं अनुभाग कांडक बढ़ाते 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 अलग अलग, तो आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण अलग अलग हम कांडक वहां देख सकते हैं, उन सभी में अनंत भाग हानि ही पाई जाती। इतने उर्वंक प्रमाण अंतिम अनुभाग का घात होने तक अनंत भाग हानि ही होती है। जो पढ़ रहे उसका अर्थ अभी ख्याल में आ रहे हैं ना, कल तो सारा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। हाँ हाँ, इससे अधिक अनुभाग का घात करने पर असंख्यात भाग हानि का प्रारंभ होता है, जो जब तक कब तक ये चलेगा नीचे और चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तो संख्यात भाग हानि स्थान नहीं प्राप्त होता। स्थान और नहीं में अंतर करो, तब तक जाती है। उसके उल्टे क्रम से कहेंगे हम तो संख्यात भाग हानि तब तक जब चलेगी तब तक वो असंख्यात भाग हानि का चलता जाएगा। उसके बाद इसी को वृद्धि की अपेक्षा से बताया, कब तक नीचे जाना, जब संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान नहीं प्राप्त। उल्टी ओर से देख रहे हैं ना, वृद्धि वाला पहला कहाँ वहां पर। उसके बाद संख्यात भाग हानि का प्रारंभ होता है, जो जब तक संख्यात गुणहानि स्थान नहीं प्राप्त होता तब तक जाती है। उन्होंने डायरेक्ट वो हानि के स्थानों की अपेक्षा बता दी, संख्यात भाग हानि संख्यात भाग हानि संख्यात भाग हानि कब तक, संख्यात गुणहानि जब तक नहीं होती तब तक। यह संख्यात गुणहानि स्थान कितने स्थान नीचे जाने पर उत्पन्न होता है, इसकी मीमांसा करते हुए बतलाया है कि जहां के संख्यात भाग हानि का प्रारंभ हुआ है, जहां से चाहिए ना, जहां से जहां से संख्यात भाग हानि का प्रारंभ हुआ है, वहां से उत्कृष्ट संख्यात के साधिक अर्धभाग प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि के विकल्प कम करने पर, क्योंकि यहां वृद्धि की अपेक्षा से बात हो रही ना, हम मान लेते हैं कि ये उसका संख्यात गुण संख्यात वा भाग चल रही था भाई, संख्यात भाग हानि का प्रारंभ हुआ, कब तक नीचे चला जाएगा, जब तक संख्यात गुण हानि प्रारंभ नहीं होती। तो इसको समझाने के लिए वृद्धि की अपेक्षा से बताया कैसे,
संख्यात का
यह संख्यात गुण हानि स्थान कितने स्थान नीचे जाकर उत्पन्न होता है, तो उसकी मीमांसा करते हुए बतलाया है कि जहां से संख्यात भाग हानि का प्रारंभ हुआ है, वहां से उत्कृष्ट संख्यात के साधिक अर्धभाग प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि के विकल्प कम करने पर। अब ये संख्यात भाग वृद्धि का पहला विकल्प है, यहां से संख्यात भाग हानि भी है ना, और यहां संख्यात भाग उल्टे क्रम से वृद्धि भी है, तो ये संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान यहां से ऊपर जाने वाला, फिर ये दूसरा स्थान तीसरा स्थान चौथा स्थान, कितना स्थान ये सारे देखना है। तो जिस हम उत्कृष्ट संख्या से भाग देते थे उस उत्कृष्ट संख्या के साधिक अर्धभाग प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि के विकल्प कम करने पर, यानी कितने विकल्प चले जाएंगे हमारे
उत्कृष्ट संख्या के,
उत्कृष्ट संख्या के मान लेते आधे प्रमाण, साधिक आधा लिखा है, वहां तक हम नीचे आएंगे
संख्यात भाग वृद्धि के।
हाँ, तो वहां ये जो स्थान होगा इसको हम संख्यात गुणा हानि का स्थान वहां से प्रारंभ होगा। यहां तक संख्यात भाग हानि के थे, अब यहां से नीचे चले जाएंगे
संख्यात
तो संख्यात गुणा हानि के,
संख्यात भाग हानि के जो स्थान है इसके ऊपर उसके जो वृद्धि के स्थान है
नहीं, उसी के साथ साथ है ये हाँ, जहाँ यहाँ जो है ना वहीं पर इसके हैं, नीचे जाएंगे तो संख्यात गुणहानि और ये सारे संख्यात भाग हानि, ये भी संख्यात भाग वृद्धि के स्थान है।
उसके ऊपर भी होंगे संख्यात भाग?
नहीं नहीं, उसके ऊपर नहीं होगी, दोनों एक लेवल पर है। इससे आगे जब तक आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण संख्यात गुणहानियां होकर असंख्यात गुणहानि नहीं उत्पन्न होती, तब तक अनुभाग कांडक घात संख्यात गुणहानि का ही विषय रहता है। जब असंख्यात गुणहानि होगी तब उसको कहेंगे असंख्यात गुणहानि का विषय हो गया। ये आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण संख्यात गुणहानियां होती है ऐसा तो यहां नहीं लिखा। एक्चुअली
इसे ना जब तक आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण संख्यात गुणहानियां होकर असंख्यात गुणहानि नहीं उत्पन्न होती है,
ठीक है। उसको यहाँ दूसरी भाषा में समझाया था, कितनी बार दो गुणहानि हुई उस भाषा में समझाया था, और यहाँ डायरेक्ट उन्हें कितनी होती है उसमें उसको बताया, ठीक है। उतने आधे आधे हुए, उतने कांडक हुए ऐसा नहीं कहा, ये दोनों कथन अलग अलग है। उससे आगे अंतिम अष्टांक स्थान के पूर्व तक जितना भी अनुहा कांडक है घात है वह सब असंख्यात गुणहानि का विषय रहता है। यही जो अभी हमने देखा था संख्यात गुणहानि, यानी वो आधे 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 की भाषा में वहां समझाए थे, बाद में क्या होगा असंख्यात गुणहानि हो जाएगी। असंख्यात गुणहानि असंख्यात गुणहानि कब तक? तो पहली बार जब अनंत गुणहानि शुरू होगी अष्टांक वाली, उसके पूर्व तक असंख्यात गुणहानि वाले स्थान हो। उसके आगे यदि अंतिम अष्टांक के साथ कांडक घात करता है तो अनंत गुणहानि का प्रारंभ होता है, यहां से शुरू हो गया। यहां से आगे जितना भी घात है वह सब अनंत गुणहानि का ही विषय है। किंतु यहाँ पर इतना विशेष समझना चाहिए कि कांडक घात के द्वारा पूरे अनुभाग का घात नहीं होता, समझ जाए ना बात, पूरा अनुभाग का कभी घात नहीं होगा, कांडकों में होगा। यहाँ पर बुद्धियों और हानियों के जितने स्थान उत्पन्न होते हैं उतने ही अवस्थान विकल्प भी बन जाते हैं, मात्र मिथ्यात्व के अनुभाग का अवक्तव्य संक्रम कभी नहीं होता, क्योंकि इसके संक्रम का अभाव होकर पुनः संक्रम की उत्पत्ति संभव नहीं है। वृद्धि प्ररूपणा में मिथ्यात्व के छह वृद्धियां छह हानियां और अवस्थान की बात हमने देखी। अब आगे देखते हैं सम्मत सम्मा मिच्छत्तानम अथि अनंत गुणहानि अवट्ठानम अवत्तव्यम च अवत्तव्यम च। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में वृद्धि कितने प्रकार की होगी मंजुबेन? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में, यहाँ अभी हमने मिथ्यात्व में छह प्रकार की वृद्धि देखी, छह प्रकार की हानि देखी, तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में कितने प्रकार की वृद्धि होती है? हाँ, अनुभाग की बात चल रही ना, क्या कहते हैं मयंक में? अनंत वाली नहीं होगी, आप क्या कहते हैं?
होगी, एक भी नहीं होगी।
समय तो समय मिथ्यात्व में जब से तैयार हुए उत्कृष्ट ही अनुभव है।
नहीं
होगी, सही है। तो उसमें वृद्धि नहीं होती, तो क्या होती है? तो हानि
होती है,
तो हानि होती है, तो उसमें वो कौन कौन सी छह हानियों में से कौन सी हानि होगी? तो क्या लिखा अभी हमने, क्या पढ़ा? अनंत गुणहानि ही होती है डायरेक्ट, और वो कब शुरू होती है? क्षपणा के पहले अनुभाग कांडक में होती है, तो वहां से वो अनंत गुणहानि वाला ही स्थान होगा उसको। उसके बीच वाले अनंतवा भाग कम हुआ, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। बताए ना यहाँ अनंत गुणा हानि वाले ही, जब जब कांडक होते चले जाएंगे आगे आगे तो अनंत गुणा हानि वाले ही होगा। उसमें तरतमता होगी, उसमें जितनी हानि होती है अनंत गुणा हानि ही होती है, परंतु कहाँ हानि ज्यादा हुई कहाँ हानि कम हुई उसमें तरतमता होगी। क्योंकि हमने पहले देखा था उत्कृष्ट हानि किसको होती है और जघन्य हानि किसको होती है। जघन्य हानि वो आवली और दो समय से आवली और एक समय तक आया तब जघन्य हानि हुई, और पहली बार जब कांडघात हुआ तभी उत्कृष्ट हानि हुई। फिर भी जितनी होती वो कितनी है तो अनंत गुणा हानि ही होती है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अनंत गुणहानि अवस्थान और अवक्तव्य पद होते हैं। अवक्तव्य कब होता है?
26 की सत्ता वाला।
हाँ उपशम श्रेणी, उपशम श्रेणी में मिथ्यात्व में कोई अंतर नहीं है, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में कुछ अंतर नहीं होता। हाँ औपशमिक सम्यक्त्व के काल में जब सत्ता तैयार होती है तो पहले समय में तो सत्ता हुई और दूसरे समय में संक्रमण शुरू हुआ तो उसके हम कहेंगे अवक्तव्य संक्रामक है। दर्शन मोहनी में उपशम श्रेणी में कुछ नहीं होता है, चारित्र मोहनी में होता है। देखो दर्शन मोहनी की क्षपणा में अनंत गुणहानि संभव है, हानि के सिवा अन्यत्र सर्वत्र ही अवस्थान संक्रम संभव है। जब हानि नहीं हो रही है तब क्या है तो अवस्थान ही है, भले वो क्षपणा के काल में हो या अन्यत्र हो। क्षपणा में भी हानि कब होती है? जब जब कांडक का घात होता है तब तक। थ्रू आउट कांडक का जो उत्कीर्ण काल है उतना का उतना अनुभाग कायम रहेगा। और असंक्रम से संक्रम रूप अवस्था को प्राप्त होने का, पहले असंक्रामक था भले वो उद्वेलना के आवली में प्रवेश कर चुका हो या मात्र 26 की सत्ता वाला हो, असंक्रामक था संक्रमण को प्राप्त हुआ। कब होता है? उपशम सम्यक्त्व के दूसरे समय में अवक्तव्य संक्रम होता है। इस प्रकार इन तीनों का सद्भाव यहाँ पर विरोध को नहीं प्राप्त होता, मात्र शेष पद यहाँ पर संभव नहीं है। शेष पद ने छह वृद्धि में से कोई भी नहीं है, पांच हानि में से कोई भी नहीं है, बाकी अवस्थान है अवक्तव्य है और अनंत गुणा हानि। अब अनंतानुबंधी में बताएंगे। अनंतानुबंधिणम अथि छविहा वड्ढी छविहा हानि अवट्ठानम अवत्तव्यम अवत्तव्यम च, इसमें सब कुछ है। मिथ्यात्व में अवक्तव्य नहीं था, यह अनंतानुबंधे छ हानि भी है वृद्धि भी है अवस्थान भी है और अवक्तव्य भी। देखो नीचे पढ़ेंगे अनंतानुबंधियों के छह प्रकार की वृद्धियां छह प्रकार की हानियां अवस्थान और अवक्तव्य पद होते हैं। समुत्कीर्तन है ना तो होते हैं, स्वामित्व की बात आगे होगी। जिस प्रकार मिथ्यात्व के प्रसंग से कथन कराए हैं उसी प्रकार छह प्रकार की वृद्धियों छह प्रकार की हानियों और अवस्थान की संभावना पूरी तरह से यहाँ पर जान लेनी चाहिए, परंतु अवक्तव्य संक्रम विसंयोजना पूर्वक संयोग के होने पर जाना चाहिए। कब होता है संयोग? होते ही होता है क्या संयोजना? हाँ बोलो ना, आवली की बात तो घबराती क्यों हो? आवली के पश्चात संयोजना होने पर नया बंध किया है, आवली के पश्चात उसका संक्रमण शुरू होगा। एवं शेषाणम कम्माणम, इसी प्रकार शेष कर्मों के विषय में जानना चाहिए। इसी प्रकार ने उसमें भी छह वृद्धियां छह हानियां अवस्थान और अवक्तव्य होता है। अब शेष में अवक्तव्य कहेंगे तब कब कहेंगे? अभी अभी बोलो शेष कर्मों में अवक्तव्य कब होगा? हाँ अभी उपशम श्रेणी से उतरते समय शेष है ने अभी हमने यहाँ मिथ्यात्व को छोड़ा, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व को छोड़ा, उसके बाद अलग बताइए अनंत अनुबंधी को छोड़ा है, अब यहाँ तो अन्य की बात है, वो उपशम श्रेणी में घटित होगा। यहाँ पर शेष पद के ग्रहण करने से बारह कषाय, जरा बीच में स्पष्ट प्रिंट आया है, और नौ नौ कषायों का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उनके अनंतानुबंधियों के समान छह वृद्धि छह हानि अवस्थान और अवक्तव्य पदों की समुत्कीर्तना करनी चाहिए। बस ये पद होते हैं, इतना ही अपना यह विषय, किसको होते वो तो आगे स्वयं बताएंगे स्वामित्व में, क्योंकि उनके कथन से इनके कथन में कोई विशेषता नहीं। क्या कहा? विशेषता होगी स्वामित्व में, कथन में कोई विशेषता नहीं, कथन में कोई अंतर नहीं है, इतनी विशेषता है वो स्वयं बता रहे। सर्वोपशमना से गिरने पर अवक्तव्य पद संभव है, ऐसा कहना चाहिए। संभव है ने पाया जाता है, संभव है का मराठी अर्थ अलग होता है कि पॉसिबल है, वो ऐसा नहीं देना। संभव है ने पाया जाता है, कब पाया जाता है? उतरते
सर्वोपशमना से।
ये क्यों मेरे ख्याल में आया? क्योंकि ये अनुवाद कर रहे हैं ना, तो हर जगह संभव है संभव है संभव है ने, वो अन्य भी पॉसिबल हो सकता है ना, ऐसा नहीं पाया जाता है। हाँ, संभव है ने हो भी सकता है, वैसी नहीं है यहाँ तो। कब पाया जाता है? तो उतरते समय पाया जाता है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। आदेश से मनुष्य त्रिक में ओघ के समान भंग है, क्योंकि वो जो अन्य कषाय में उतरते समय होता है तो मनुष्य त्रिक में ही संभव है। शेष सब मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, यानी जो सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का भी वो क्षपणा में घटित होगा, मनुष्य में ही घटित होगा,
अवस्था नहीं होगा।
सम्यक मिथ्यात्व का स्पेशल, अभी सम्यक्त्व का अन्य मार्गणा में होता है, परंतु उसका जो अनुभाग का घटना है वो तो अवस्थान वहां नहीं पाया जाएगा, अवस्थान उस अपेक्षा से नहीं पाया जाएगा हानि के पश्चात वाला, परंतु उत्कृष्ट का उत्कृष्ट रहता है उसका अवस्थान तो होगा। विशेषार्थ मनुष्य त्रिक में ओघ प्ररूपणा की सब विशेषताएं संभव होने से उनमें ओघ के समान जानने की सूचना की है, क्योंकि वहां दशमोह की भी क्षपणा होती है और चारित्र मोहिनी में उपशमना भी होती है, तो अवक्तव्य आदि सभी भंग वहां पाए जाएंगे। परंतु सासादन में दर्शन मुनि का संक्रमण अनुभाग संक्रमण चलेगा, क्योंकि उसका अनुभाग संक्रमण कभी अवस्थान रूप से होगा, या क्योंकि अन्य कोई विशेष कार्य नहीं हो रहे ना वहां पर, नया बंध कैसा हुआ? बंध तो है ही नहीं वहां पर, यानी वहां अन्य भी कोई
अवस्था नहीं होगा ना।
हाँ,
क्योंकि
और उसके अनुभाग
तो
सम्यक तो प्राप्त किया, उपशम सम्यक तो के पहले अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में तो कांडक घात हुए, अब सम्यक तो प्राप्त हो गया, अब अनुभाग कांडक होने का कोई सवाल नहीं है। यदि अनंत अनुबंधी की विसंयोजना करता है तो ही अनुभाग कांडक होता है, अन्यथा उसका अनुभाग उतना का उतना रहेगा। हमने देखा था सर्वार्थ सिद्धि में तो उतना का उतना रहेगा, 33 सागर तक, यानी उतना अनुभाग रहेगा उसका, तो वो सासाधन में आया है, तो मिथ्यात्व का अनुभाग ना बढ़ेगा ना घटेगा कुछ, वहां तो कुछ क्रिया ही नहीं है, क्योंकि बढ़ता कब है? जब बंद होगा मिथ्यात्व में, तो
मिथ्यात्व
में जाकर बंद होगा, यहाँ तो कोई सवाल नहीं है। और विसंयोजना करके वापस आने वाला अधिक बंद करेगा नहीं कुछ काल तक, उसका बंद मिथ्यात्व का भी वो संक्लेश होने के लिए अंतर्मूर्त चला जाएगा, जैसे हमने अनंत अनुबंधी में देखा, संयोजना करने पर भी उसका एक स्थानिक बंद है, फिर जाके एक अंतर्मूर्त के बाद ज्यादा है, फिर भी एक इंद्रिय से कम अनुभाग, तो उसकी इतनी विशुद्धि है तो मिथ्यात्व को भी मंद ही अनुभाग बंधेगा, यानी अंतर्मूर्त के पहले तो उसका बढ़ेगा नहीं उसमें। अच्छा है, प्रश्न पूछते तो उसके ऊपर विचार भी करते हैं ना, उत्तर भी मिल जाता है। परंतु गति संबंधी अन्य मार्गणाओं में, अन्य मार्गणाओं में होता ऐसा नहीं, होता ऐसा नहीं कहा, गति संबंधी अन्य, यानी अन्य गतियों में नहीं होता, अन्य मार्गणा जो है, जो काय मार्गणा है योग मार्गणा है उसमें तो होगा, जहां जहां जिन मार्गणाओं में मनुष्य त्रिक संभव है वहां उनका
सभी पद होगा।
हाँ, वो होगा, वैसा ही कथन होगा। इसलिए कहते गति संबंधी अन्य मार्गणाओं में ओघ संबंधी सब प्ररूपण घटित नहीं होकर अनुभाग विभक्ति के समान भंग बन जाने से उनमें अनुभाग विभक्ति के समान जानने की सूचना की है, जो अभी हमने देख लिया है। कि जहाँ विसर्जना होती है वहाँ तो चारों गति में होती है, वो तो घटित होगा वहाँ पर। दर्शन होने की क्षपना मात्र मनुष्यों में होती है, वो नहीं घटित होगा। मिथ्यात्व की वृद्धि हानि, वो तो सभी मिथ्या दृष्टियों के संभव है, तो वो भी घटित होगा वहाँ पर। जघन्य अनुभाग नहीं कह रहे हम, हानि जघन्य कह रहे हैं, वृद्धि जघन्य कह रहे हैं, उत्कृष्ट वृद्धि कह रहे हैं, उत्कृष्ट हानि कह रहे हैं, यानी छह वृद्धि हानियां वहां संभव है, ये बात बताए। इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई, यानी वृद्धियां होती है इतना ही कथन कर दिया। अब वो स्वामित्व यानी किसके होती है वो बात अभी यहां पर बताएंगे। सामित्तम, अब स्वामित्व को कहते हैं। समुत्कीर्तना के बाद स्वामित्व अधिकृत है, इसलिए अधिकार की संभाल करने के लिए यह सूत्र आया है। मिच्छत्तस्य छव्विहा वड्डी पंचविहा हानिकस्य। अब हानि में पांच ही लिया, क्योंकि स्वामित्व में जो कुछ वेरिएशन है वो यहां बताएंगे। तो कहते हैं मिथ्यात्व की छह प्रकार की वृद्धियों और पांच प्रकार की हानियों का स्वामी कौन है? क्या मिथ्या दृष्टि या सम्य दृष्टि या दोनों ही प्रकृति में स्वामी हैं? इस प्रकार पृच्छा की गई है। वृद्धियां तो सम्य दृष्टि के हो ही नहीं सकते, यानी उतना तो हम सोच भी सकते। यहाँ पर पांच प्रकार की हानियां ऐसा कहने पर अनंत गुणहानि को छोड़कर शेष पांच हानियों का संग्रह करना चाहिए। अनंत गुणहानि वाला ने हमने देखा था, वो बड़ा कांड क्या उसका थोड़ा कम, हमने जो स्थान देखे थे उसके अनंत गुणहानि के भी बहुत सारे स्थान। तो कहते हैं ये छह वृद्धि और पांच हानि किसके होती है? उसके उत्तर में कहते हैं मिच्छा इट्ठिस अन्नय रस्य। अन्यतर मिथ्या दृष्टि जीव उनका स्वामी है, सम्यक दृष्टि के तो मिथ्यात्व की अनुभाग विषयक छह वृद्धियों की संभावना है नहीं, यानी वो तो पॉसिबल ही नहीं उसके, क्योंकि वृद्धि तभी होती है जब उसको अधिक बंद करके एक आवली बीत जाएगा, क्योंकि वहां पर मिथ्यात्व का बंधन नहीं होता, यानी मिथ्यात्व के अनुभाग की वृद्धि मात्र मिथ्या दृष्टि के हो सकती है, और बंध के बिना अनुभाग संक्रम की वृद्धि नहीं उपलब्ध होती है, क्योंकि ऐसा पाया नहीं जाता, ये तो रूल हो गया। उसी प्रकार पांच हानियां भी वहां पर नहीं है, क्योंकि अत्यंत मंद विशुद्धि से भी कांडकघात करने वाले सम्यक दृष्टि जीव के अनंत गुणहानि को छोड़कर शेष पांच हानियां असंभव है। क्या कहना चाहते हैं? सम्यक दृष्टि जीव यदि हानि करता है तो अनंत गुणहानि ही करेगा, क्योंकि उसकी विशुद्धि ज्यादा है। मिथ्या दृष्टि जीव
पांच करेगा,
मिथ्यात्व ही अवस्था में वो
पांच हानि करेगा।
हानि पहले जितना बंधा है सत्ता में है उसकी थोड़ी थोड़ी हानि करेगा, फिर भी अधिक से अधिक भी करेगा तो असंख्यात गुणहानि ही होगी। तो पांच हानियां उसके हो सकती है, ये अनंत गुणहानि वाली हानि नहीं होगी। इसलिए मिथ्या दृष्टि के ही विवक्षित छह वृद्धियों और पांच हानियों का स्वामित्व है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ सुनिर्णित है, यानी निश्चित है। यहां पर सूत्र में जो अन्यतर पद का ग्रहण किया है वह अवगाहन आदि विशेष के निषेध के लिए जानना चाहिए, यानी किसी विशिष्ट गति या बड़ी अवगाहना वाला है ऐसी कोई बात उसमें नहीं है, अन्य विशेषता उसमें कुछ जरूरी नहीं है, इसलिए अन्यतर कह दिया। अब कहते हैं कि ये तो यहाँ तो छह वृद्धियां पांच हानियां तो बता दी, अब कहते हैं अनंत गुणहानि और अवस्थित वाला तो बताया नहीं है, तो उसका स्वामी कौन है? ऊपर पूछते अनंत गुणहानि अवट्ठित संकमो कस्य। मिथ्यात्व की बात चल रही है, अनंत गुणहानि और अवस्थित संक्रम का स्वामी कौन है? यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रश्न मात्र में इसका व्यापार हुआ है, यानी ये तो प्रश्न ही है, तो इसका अर्थ ख्याल में आ रहे हैं। कहते अन्य रस्त, अन्यतर जीव उनका स्वामी है। किसकी बात चल रही है? अनंत गुण हानि वाली
और व्यवस्थित का
अन्य अन्य हानियां जो है वो समय दृष्टि के नहीं होती है,
मिथ्या दृष्टि की होती है।
मिथ्या दृष्टि के तो छह हो सकती है, ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि के पांच होती है और समय दृष्टि के छठी होती है, ऐसा नहीं है। अनंत गुणहानि समय दृष्टि के भी होती है, मिथ्या दृष्टि के भी होती है, परंतु अन्य जो पांच हानियां हैं वो समय दृष्टि के नहीं होगी, मिथ्या तो नहीं होगी। इसका अर्थ क्या है? मिथ्या दृष्टि में छह हानियां होती है, तो समय दृष्टि में होगी तो मात्र एक अनंत गुणहानि ही होगी। देखो अन्यतर जीव उसका स्वामी हो, मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि इनमें से अन्यतर के उनके दोनों के स्वामी का संबंध, स्वामित्व का संबंध है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्योंकि हमने देखा अनंत गुण हानि वाले भी कांड करेगा, मिथ्या दृष्टि जीव भी कर सकता है। सम्मत्त सम्मा मिच्छत्तानम अनंत गुण हानि संकमो कस। हमने समुत्कीर्तना में क्या देखा था? कौन कौन वृद्धि तो होती नहीं, समय तो समय मिथ्या कर, हानि होती है तो कौन सी होती है? कौन सी? अनंत गुण हानि ही होती, उसमें अन्य हानियां नहीं है। और वो भी कब होती है? तो क्षपणा के कारण। तो अनंत गुण हानि संक्रम का ऊपर पढ़ा ना हमने, सम्मत सम्मा मिच्छता ना अनंत गुण हानि संक्रमो कस, समय कर समय मिथ्यात्व के अनंत गुणहानि संक्रम का स्वामी कौन है? स्वामित्व के संबंध विशेष की अपेक्षा करने वाला यह पृच्छा सूत्र सुगम है। यानी यहाँ तो मात्र प्रश्न ही पूछा है, उसका उत्तर तो आगे होता है। दंशन मोहनीयम खवेंतस्य, दर्शन मोहनी की क्षपणा करने वाला जीव उसका स्वामी है। क्योंकि दर्शन मोह की क्षपणा के सिवा अन्यत्र इन प्रकृतियों का, इन प्रकृतियों की बात चल रही है, अनुभाग घात होना असंभव है। यानी ना ही उद्वेलना में होता है और ना ही अन्य कोई समय दृष्टि है, अनंतानुबंधी की विसर्जना कर रहा है, तो मिथ्यात्व आदि अन्य प्रकृतियों का तो घात होता है अनुभाग कांड कर। सम्यक तो सम्यक, मिथ्यात्व तो उत्कृष्ट ही रहता है उसके लिए। मात्र क्षपणा के काल में जब अनुभाग कांडक शुरू होता है
तब
इसका घात होगा। इसलिए अन्य विषय के परिहार द्वारा यहीं पर स्वामित्व है। इस प्रकार सम्यक प्रकार से, सम्यके हुए सम्यक प्रकार से अवधारण किया, धा चाहिए, घात दिख रहा है। सम्यक यानी समीचीन, यथार्थ अवधारण करना यानी जानना। अब सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के बारे में पूछे हैं। अवस्थान संक्रमो कस्य, उनके अवस्थान संक्रम का स्वामी कौन है? यह सूत्र सुगम है।
दोनों
तो कहते हैं अन्नदरस, अन्यतर जीव उसका स्वामी है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के उसकी उपलब्धि होने में विरोध नहीं आता। मेरा प्रश्न है, दर्शन मोनी की क्षपणा करने वाला इसके अवस्थान का स्वामी है कि नहीं है? क्योंकि हानि वाला हमने देखा ना, अनंत गुणहानि कौन करता है? तो दर्शन मोनी की क्षपणा करता है। तो अवस्थान दर्शन मोनी के क्षपक को, इसका अवस्थान होगा कि नहीं होगा? हाँ,
दो कांडक के बीच।
देखो एक कांडक पूर्ण हो गया तो घात हो गया, फिर दूसरा कांडक जब तक चल रहा है तब तक अवस्थान ही होगा ना उसका, भले क्षपणा कर रहा है। अवस्थान कब नहीं होगा? वो कृतकृत्य वेदक की बात करते, जब 8 वर्ष के बाद वो प्रति समय जब वहाँ अपवर्तना होते हैं वहां पर उसके अवस्थान नहीं होगा। परंतु क्षपणा का कार्य तो मिथ्यात्व की क्षपणा चल रही, समय मिथ्यात्व की चल रही, उसमें तो उसका घात हो ही रहा है, परंतु बीच बीच में कांडक में अवस्थान भी है, तो इसलिए अन्यतर उसका स्वामी कहा। क्योंकि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के उसकी उपलब्धि होने में विरोध नहीं आता। इनमें अवक्तव्य भी है सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में। अवक्तव्य संक्रमो कस्य, उनके अवक्तव्य संक्रम का स्वामी कौन है? यह सूत्र सुगम है। वर्ते द्वितीय समय उपशम सम्मा इट्ठिस द्वितीय समय वर्ती उपशम समय दृष्टि जी उसका स्वामी है, क्योंकि जिसके सत्ता नहीं थी संक्रम नहीं था, सत्ता के बदले हम संक्रम कहेंगे, पहले संक्रम नहीं था अभी शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ, तो औपशमिक समय तो प्राप्त हुआ उसकी सत्ता बनी और दूसरे समय से उसका संक्रमण शुरू हुआ। यह आवली वाला नियम नहीं हो, हाँ आवली वाला नियम बंध में है, ये प्रकृतियां बंध से प्राप्त नहीं हो रही है क्योंकि वहां असंक्रम से संक्रम रूप प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से पाई जाती है। शेषाणम कम्माणम मिच्छत्त भंगो, शेष कर्मों का भंग मिथ्यात्व के समान है, परंतु मिथ्यात्व में अवक्तव्य नहीं है, अवक्तव्य कहेंगे उसका स्वामी भी कहेंगे शायद आगे कहेंगे। यहाँ पर शेष पद द्वारा कषायों और नौ कषायों का निर्देश किया है, यानी छह वृद्धि और छह हानियों में तो वो समानता बताएंगे, उनके प्रकृत स्वामित्व का विधान करते समय मिथ्यात्व के समान भंग करना चाहिए क्योंकि उससे इनकी स्वामित्वगत कोई विशेषता नहीं है, यह इस सूत्र का अर्थ है। मात्र अवक्तव्य के संबंध में यानी अवक्तव्य संक्रम के संबंध से स्वामित्व संबंधी उनमें थोड़ी सी विशेषता है, इसलिए उसका निर्देश करने के लिए आगे के दो सूत्र कहते हैं, क्योंकि अनंत अनुबंधी में अलग स्वामी होगा और अन्य बारह कषायों में स्वामी अलग होगा। नवरी अनंतानुबंधिनम अवक्तव्यम विसंजो ये दूण पुणोमिच्छत्तम गंतुण आवलिया दीदस्य, आवलिया दीदस्य ने आवलिया अतीतस्य, आवली बीत चुकी है उसके यहाँ, किंतु इतनी विशेषता है कि जिसे विसंजना के बाद पुनः मिथ्यात्व में जाकर एक आवली काल हुआ है वह अनंतानुबंधियों के अवक्तव्य संक्रम का स्वामी है। यह मात्र जघन्य की बात नहीं, यहाँ तो कोई जघन्य अजघन्य हो सकता है, यथा योग्य परिणाम से यहाँ जघन्य संभव है, परंतु असंक्रामक सत्ता ही नहीं थी, अब नया बंध किया है और आवली के बाद उसका संक्रमण शुरू होगा, उसको हम अवक्तव्य कहेंगे। एक ख्याल में आने मैं क्या कहना चाहती हूँ, अवक्तव्य तो सभी हो गए जो संयोजना करने वाले हैं, परंतु उसमें जघन्य तो वे ही हो गए विशिष्ट परिणाम से वो बंधेगा, क्योंकि उसमें यथायोगी अलग अलग परिणाम हो गए जो जघन्य में जघन्य विशुद्धि के द्वारा, वहाँ विशुद्धि ज्यादा होगी और बंध जघन्य होगा। ये तो अनंतानुबंधी के बारे में हुआ अवक्तव्य, और अन्य कर्मों के बारे में बताएंगे। शेषाणम कम्माणम अवक्तव्यम उवसा में दूण परिवद मानस तथा उपशमने के बाद गिरने वाला जीव शेष कर्मों के अवक्तव्य संक्रम का स्वामी है। मंजुबेन शेष कर्म में किस किस को लेना, यहाँ क्या कहा अवक्तव्य संक्रम किस किस में होता है, समय समय मिथ्यात्व की बात बता चुके, अनंतानुबंधी में होता है अवक्तव्य वो भी बता चुके, शेष कौन रहे अभी, हाँ बहुत अच्छा, बारह कषाय और नौ नौ कषाय है, उनमें जो अवक्तव्य होता है वो कब होता है, उपशम श्रेणी से गिरते हुए होता है तथा हाँ। उपशमना के बाद गिरने वाला जीव शेष कर्मों के अवक्तव्य संक्रम का स्वामी है। ये दोनों ही सूत्र सुबोध है, क्योंकि हमने अलग अलग पद्धति से बहुत बार चर्चा हो गई अपनी, वहां नहीं समझ में आवे ऐसे है। इस प्रकार ओघ से स्वामित्व का अनुगम किया। अब चूर्णी सूत्र द्वारा कहे गए अर्थ का निर्णय करने के लिए यहाँ पर उच्चारणा को बतलाते हैं, उच्चारणा की अपेक्षा स्वामित्व दोबारा कहेंगे। यहाँ स्वामित्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से देखो, हमेशा जब हम देख रहे थे उत्कृष्ट और जघन्य की बात पहले उठाई थी, फिर उत्कृष्ट में और कथन करते, यहाँ तो क्या है वृद्धि की जो कितना प्रमाण है उसको बताना है, तो उसमें तो जघन्य उत्कृष्ट सब आ गए, क्योंकि वृद्धि में अनंत भाग वृद्धि से अनंत गुणा वृद्धि तक के सारे वृद्धि में ले लिए और हानि में भी सभी ले लिए। तो यहाँ उत्कृष्ट जघन्य का ऐसा नहीं, केवल ओघ और आदेश ऐसे दो भाग हो गए। अन्यत्र हमने पहले में पहले उत्कृष्ट भी पद होता है, जघन्य भी पद होता है, ऐसी बात की। यहाँ तो वृद्धि में छह प्रकार के वृद्धियां, छह प्रकार के हानियों का कथन है, इसलिए उसका स्वामित्व कहाँ है वो बात बता रहे। ओघ और आदेश, ओघ से अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि 12 कषाय और 9-9 कषायों के अवक्तव्य संक्रम का भंग भुजगार संक्रम के अवक्तव्य भंग के समान है। यानी भुजगार अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य में हमने देखा था और यही देखा अभी उषम श्रेणी से गिरते हुए। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, शेष सब मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। शेष सब मार्गणाओं में गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा आदि मार्गणाओं में, क्योंकि अनुभाग संक्रम के प्रकरण में हमने हर एक मार्गणा पर वहां घटा के देखा था। अब स्वामित्व संबंधी सूत्र के द्वारा सूचित हुए कालादि अनुयोग द्वारों का विशेष व्याख्यान करने के लिए यहाँ पर उच्चारणा का अनुगम करते हैं। यहाँ तो मूल में चूनी सूत्र में तीन ही बताए, समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पभूतव। स्वामित्व से ही उसके काल आदि जो है वो सिद्ध होते हैं, उसी में गर्भित है। जैसे कोई वृद्धि या कोई हानि होती है तो लगातार हो सकती है क्या, और होती है तो कम से कम कितने काल और अधिक से अधिक कितने काल? क्या वृद्धि लगातार हो सकती है और उसमें भी विशिष्ट वृद्धि की बात है? अनंत गुणा वृद्धि के दूसरे समय भी अनंत गुणा वृद्धि हो सकती है, ये बताएंगे अभी। तो केवल भुजगार नहीं कहना है, पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक विशिष्ट वृद्धि होती है कि नहीं लगातार, इसकी बात चलेगी। भुजगार में तो हमने कहा ना, हाँ भुजगार होता है लगातार, वो हानि भी एक समय होती है, जब जहाँ क्षपणा होती है सूक्ष्म लोभ और सम्यक वगैरह में प्रति समय भी होती है। तो ऐसे विशिष्ट हानि या वृद्धि लगातार कितने समय तक होगी,
एक समय तक
ये वृद्धि का यहाँ विषय चलेगा। तो वृद्धि का काल कहलाएगा इसको। तो कालानुगम से निर्देश दो प्रकार का है, समझ में है ना? काल किसको कहना, ओघ और आदेश। ओघ से अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, इतनी विशेषता है के 12 कषाय और 9-9 कषायों के अवक्तव्य संक्रम का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। और मनुष्य त्रिक में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, इतनी विशेषता है 12 कषाय और 9-9 कषायों के अवक्तव्य संक्रम का भंग ओघ के समान, यानी एक समय है। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। देखो अनुभाग विभक्ति में जरा देख लेते हैं हम,
पर वहाँ पे तो खाली वृद्धि बताई थी, यहाँ पे ये छह वृद्धि कितने काल?
वहाँ भी छह वृद्धि बताई थी ना। वृद्धि विभक्ति में वहाँ तो हमने काल अंतर वो सब देखा था। देखो 309 पृष्ठ है पुस्तक, पांचवी पेज 309, कालानुगम वहां से शुरू होता है, नीचे से तीसरी लाइन मिला क्या है आपके पास? कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार है। यहाँ अनुभाग विभक्ति की बात है, संक्रम का ऐसे हम गठित कर सकते हैं। ओघ और आदेश, ओघ से मिथ्यात्व 8 कषाय और 8-9 कषायों की 5 वृद्धियों का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। अने लगातार बढ़ता 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 चला जाएगा कोई 5 में से एक, तो लगातार कितने समय तक? तो आवली के असंख्यात्वे भाग काल तक उत्कृष्ट। अनंत गुण वृद्धि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अनंत गुणा वृद्धि, अनंत गुणा वृद्धि, अनंत गुणा वृद्धि लगातार चले तो अंतर्मूर्त तक होती है। 6 हानियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, हमने देखा था ना, क्योंकि
यह 8 समय हमने जो लिया था वहां पर प्रतिपक्ष का बंद करते करते हुआ वो यहाँ पे आठ कषाय और आठ प्रोकषायों की बात की है, तो आठ कषाय में कौन सा कषाय लेने का है? अप्रत्यय का अनप्रत्यय का?
पुरुष वेद की बात यहाँ अलग से?
हाँ, पुरुष वेद की अलग से बताइए, वो तो नौ नौ और आठ नौ कषाय में, और आठ कषाय की बात है।
पांच देखो वहाँ संज्वलन को अलग बताएंगे।
हाँ, संज्वलन को, और अनंतानुबंधी
का तो हमेशा वो अलग से बताते ही है।
तो ये प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की बात है, और आठ नौ कषाय में पुरुष वेद को छोड़ा।
हाँ,
बराबर।
अनंत गुणवृद्धि का जगन्य काल एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त बताए, ये अंतर्मूर्त है, वो अवली के असंख्या का भाग है। छह हानियों का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। छह हानियां कांडक के घात के द्वारा होगी तो एक समय
ही समय
होगी, जब जब कांडक घात होगा, क्योंकि अपकर्षण के द्वारा अनुभाग कांडक की द्विचरम आदि फालियों के पतन होने पर अनुभाग कांडक का घात नहीं होता, चरम फाली के पतन पर घात होता है। अवस्थित का काल उन्होंने एक समय से लेकर उत्कृष्ट पल्ले के असंख्या से भाग अधिक 163 साल है। ये तो मिथ्यात्व की बात हुई थी ना वहां पर, क्योंकि उसमें मिथ्यात्व के अनुभाग में कोई चेंज नहीं हुआ सम्यक तो प्राप्त करने पर, और उसमें उन्हें वो भोगभूमि का काल भी जोड़ा।
हाँ।
और 31 सागर वाला वहां पर भी जोड़ दिया, वहां अनुभाग उत्कृष्ट बढ़कर नहीं बंधेगा, है उतना ही कायम रहेगा। यह हमें आदेश में देखना था ना खास, फिर भी ये देख लेते अभी। सम्यक प्रकृति का अनंत गुणहानि का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, ये कैसे होगा? सम्यक प्रकृति में, सम्यक तो प्रकृति में जब घटना होता है तो अनंत गुणहानि ही होती है, हमने देखी थी अभी अभी। तो वो जब कांडक होता है तो एक समय के लिए होगा, और जब अनुसमय अपवर्तन होगा तो प्रति समय चलेगा, वो कितने काल तक चलेगा? तो अंतर्मूर्त तक चलेगा। अवस्थित का तो जघन्य अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट काल अभी लगातार उत्कृष्ट रहे तो उसको उत्कृष्ट ही कहेंगे, तो बीच में मिथ्या तो में भी लाना और सम्यक को भी प्राप्त कराना, दो बार 66 सागर और बीच में पल्ले का संख्या का भाग तीन बार। अवक्तव्य का तो हमेशा एक ही समय होता है, सम्यक मिथ्यात्व में
एक समय अवस्था रहे कांडक।
हाँ, उसमें तो
कांडक घात एक ही समय के लिए,
वो लगातार वाली बात नहीं होगी, इसमें मात्र कांडक से ही घात होगा, इससे एक ही समय होगा। सम्यक प्रकृति में कृतकृत्य वेदक में अंतर्मूर्त तक बताया, इसमें नहीं लिया। अवक्तव्य का तो उसमें भी एक समय। अनंतानुबंधी में क्या विशेषता है? बाकी तो मिथ्यात्व के समय बताया, परंतु अवक्तव्य भी है इसके, और अवक्तव्य कब होता है?
संयोजना
करने का, और वो भी अवक्तव्य का समय एक बताएंगे, एक ही समय के लिए अवक्तव्य, बाकी तो है। चार संज्वलनों का, वहां भी मिथ्यात्व के समान उसके हानि वृद्धि वगैरह का काल होगा, परंतु अनंत गुणहानि का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, जो क्षपणा में होता है, लगातार चला है ना, अनंत गुणहानि अनंत गुणहानि अनंत गुणहानि। पुरुष वेद में भी ऐसा है, ये नया बंधे वाला लास्ट में जो है वो हर समय वो अनंत गुणहानि वाली बात चल रही
है। ये कृष्टि वेदक का है ना, कृष्टि वेदक का, कृष्टि वेदक का, और नवक
वेदक में वो नवक संबंध है, वहाँ अंतर्मूर्त में बात नहीं होगी, एक समय कम एक दो आवली वाली बात
नहीं, दो समय कम दो आवली, तो वो भी अंतर्मूर्त हो जाएगा। प्रति समय
देखो हानि कब कहलाएगी, अंतिम समय के बाद हानि तो नहीं कहलाएगी, वहाँ तो नष्ट होगा।
हाँ, तो दो समय कम दो आवली तक उसका अनंत गुणानी अनंत गुणानी होती है,
एक समय कम दो आवली कहना, लास्ट वाला है, उसके बाद तो नष्ट होने वाला है, वहाँ घटना कैसे कहेंगे हम?
तीन समय कम दो
घटना तो दो समय
यानी तीन समय कम दो आवली तक हो गया,
एक समय कम
एक
दो
समय कम दो आवली,
आप उल्टा सोच रहे हैं।
अच्छा, और कृष्टि वेदक काल में भी अंतर्मूर्त हो जाएगा?
नहीं, अनंत गुणानि का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल एक समय कम दो आवली, इतना ही लिया। अभी इसी को आदेश में बताया है। अभी जहां जहां वो सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व की बात, उसमें जो डिफरेंस होगा अनंतानुबंधी के विसंयोजना संयोजना में, वो तो वही बात होगी। मिथ्यात्व के बारे में भी वहां भी मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके भी छो हानिया छो विद्या वगैरह सब हो सकती है, तो वहां उसका भी काल वैसे हम घटित कर सकते हैं। अभी हम आते अपने ओरिजिनल पुस्तक पर। समय हो गया ना अपना, विशेषांश पढ़ेंगे? कौन सा? दो लाइन देगी? इतनी विशेषताएं वहां
नहीं हो गया?
शेष मार्गनाम में पढ़ा था ना हमने, अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, विशेषांश ही रह गया था। अनुभाग विभक्ति में 12 कषाय और 9 कषायों का अवक्तव्य पद संभव नहीं है, जो यहाँ ओघ से बन जाता है। इसलिए यहाँ ओघ प्ररूपणा में और मनुष्यत्रिक में इस पद का काल अलग से कहा है, शेष कथन स्पष्ट ही। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो